यहाँ हम क्या पढ़ेंगे अब? अगली सूरत अल अनाम, मक्की सूरतों में, बड़ी सूरतों में ये सूरत है। क्या पता चला कि फितरत का असूल है कि जब थोड़े अरसे के बाद कुछ मूड चेंज हो जाए, गर्मी के बाद सर्दी, सर्दी के बाद गर्मी, तो अच्छा लगता है। यूनिफॉर्मिटी से बंदा बस दफ़ा थक जाता है। आप देखिए, सर्दी सर्दी करते हैं, फिर आखिर में कहते हैं अब कब जाएगी गर्मी, गर्मी गर्मी, अब ये कब जाएगी, है ना? कभी सर्दियों के मोटे कपड़ों से थक जाते हैं तो गर्मियों के कपड़े आ जाते हैं। ये फितरत का असूल है। चेंज ज़िंदगी में नरमी लाती है, रिलैक्सेशन लाती है। और सूरत अल अनाम, इसका टॉपिक का नाम है चौपाए कैटल्स। इसमें मक्का वालों की बहुत सारी फरसूदा रसूमात जो जानवरों से मुतल्लिक थी, क्योंकि मक्का वालों की असल कमोडिटी तो जानवर ही थे, या ऊँट पालते थे या बकरियाँ पालते थे। तो इसमें आपको इस दौर में भी देहाती इलाकों में जहालत के साथ जो काम लोग करते दिखते हैं ना, वो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। और आपने, मैंने इसको किस सोच के साथ पढ़ना है? आज के दौर की वो चीज़ें नोट करनी है जिसकी वजह से लोग शिर्क के हामिल हो जाते हैं। और अल्लाह ताला जो इम्तिहान लेता है किताबों में, उसको हमने अल्लाह से दुआ करते हुए ही कामयाबियों के साथ पूरा करना है। और अल्लाह ताला आपके मेरे लिए इन सारी बातों को आसान कर दे। आइए देखते हैं इस बारे में। 110 आयतें हम पढ़ेंगे, तरतीब से 6 नंबर की सूरह, और 110 आयात हम पढ़ेंगे। और यहाँ याद रखिए कि एक गो में नाजिल हुई थी ये सूरत, और हर आयत के ऊपर फरिश्ते उतरे थे। पता नहीं सूरत में क्या है, आइए देखते हैं। अभी आपको अंधेरों और रोशनियों का तकाबुल मिलेगा इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द वजाल अज़्ज़ुलुमाति वन्नूर सुम्मल्लज़ीना कफरू बिरब्बिहिम यादिलून। 1 से 10 आयात हैं शुरू की, रुकू नंबर 7 है। मौजू क्या है? अल्लाह की निशानियों पर गौर व फिक्र कीजिए। और यहाँ आपको मैंने शुरू में एक चीज़ लिखाई थी या बताई थी, याद कर ले, सूरत फातिहा में के हर 7.5 पारों के बाद एक सूरत शुरू होगी जो अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होगी। यहाँ पढ़ रहे हैं पहले सूरह फातिहा, यहाँ आप 7.5 पारा हो गया उसके पास। आगे देखेंगे 15वें पारे पे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनज़ला अब्दिहिल किताब वलम यजल लहू इवजा, सूरत कहफ। तो ये कुरान की तरतीब चलती जाएगी, गोया कि आपको मुझे रिमाइंडर मिलेंगे हर थोड़े पारों के बाद कि सारी तारीफ़ें अल्लाह की हैं। सारी तारीफ़ें अल्लाह की कौन करेगा? जो आरफू मिनल हक होगा। अल्लाह करे हमारी ज़ुबानें अल्लाह की तारीफ़ों के गुनगाने वाली बन जाएं। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लायक हैं, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया और तारीकी और नूर को भी बनाया। फिर भी काफिर लोग गैर अल्लाह को अपने रब के बराबर करार देते हैं। हसरत को महसूस कीजिए, कोई किसी कब्र पे जाके सजदा रेस हो सकता है अगर उसको अल्लाह की मार्फत हो जाए? कोई पीरों से जाकर या मुर्दों से जाकर बेटे मांग सकता है? कोई किसी को गंज बख्श कह सकता है अल्लाह के सिवा? वही कहेगा जिसको अल्लाह की मार्फत नहीं है। वो ऐसा है जिसने तुमको मिट्टी से बनाया, फिर एक वक्त मुअय्यन किया और दूसरा मुअय्यन वक्त, खास अल्लाह ही के नज़दीक है, फिर भी तुम शक रखते हो। और वही है माबूद बरहक आसमानों में भी और ज़मीन में भी। वो तुम्हारे पोशीदा अहवाल को भी और तुम्हारे ज़ाहिर अहवाल को भी जानता है, और तुम जो कुछ भी अमल करते हो वो इसको भी जानता है। और इनके पास कोई निशानी इनके रब की निशानियों में से नहीं आती, मगर वो इससे एराजी करते हैं। कहीं हमारा जिक्र तो नहीं? आयतों पर आयतें पढ़ी जा रही हैं लेकिन अमली तौर पे कहीं मुंह तो नहीं फेरते। उन्होंने सच्ची किताब को भी झुठलाया जबकि वो इनके पास पहुंची, सो जल्द ही इनको खबर मिल जाएगी इस चीज़ की जिसके साथ ये लोग मजाक किया करते थे। क्या उन्होंने देखा नहीं कि हम इनसे पहले कितनी जमातों को हलाक कर चुके, जिनको हमने दुनिया में ऐसी कुव्वत दी थी कि तुमको वो कुव्वत नहीं दी? और हमने इन पर खूब बारिशें बरसाई, और हमने इनके नीचे से नहरें जारी की, फिर हमने इनको गुनाहों के सबब हलाक कर डाला, और इसके बाद दूसरी जमातों को पैदा कर दिया। और अगर हम कागज़ पर लिखा हुआ कोई नविश्ता यानी रिटर्न चीज़ आप पर नाजिल फरमाते, फिर इसको ये लोग अपने हाथों से छू भी लेते, तब भी ये काफिर लोग यही कहते कि कुछ भी नहीं मगर खुला जादू है। और ये लोग यूँ कहते हैं कि इनके पास कोई फरिश्ता क्यों नहीं उतारा गया? और अगर हम फरिश्ता भी भेज देते तो सारा किस्सा ही ख़त्म हो जाता, फिर इनको ज़रा मोहलत ना दी जाती। और अगर हम इसको फरिश्ता तजवीज़ करते तो हम इसको आदमी ही बनाते, और हमारे इस फेल से फिर इन पर वही शक पड़ जाता जिसका वो अब शक कर रहे हैं, यानी आज जिस डाउट में उसी डाउट में पड़ते। और बाकी आपसे पहले जो पैगंबर हुए इनका भी मजाक किया गया, फिर जिन लोगों ने इनसे मजाक किया था इनको इस अजाब ने आ घेरा जिसका मजाक वो उड़ाते थे। नबी सल्लम पे मक्का वालों को जो एक एतराज़ था वो क्या था कि आप बशर क्यों हैं, फरिश्ते होते, मावरा होते, खाने पीने की हाजत ना होती, मुराद ये कि हम आपके गुण गाते रहते कि आपकी क्या बातें हैं जी, और अपनी मजबूरियों के रोने रोते, हम तो इंसान हैं जी, हमारे साथ ये है वो है। अल्लाह ने इनायतों में वो सारी बातें पेश कर दी कि तुम्हें रसूल का बशर होना चुभता है, हालांकि बशर की तरफ बशर ही आएगा। अच्छा अफसोस की बात है कि आज भी नबी सल्लम के बशर होने या कुछ और होने के बारे में बड़ी बहसें होती हैं, और वो जो नूरानी तालीमात हैं अल्लाह के नबी ने दी वो हम बहुत ही कम सोचते हैं। तो लिहाजा इस रुकू में से अपने लिए अमल के नुक्ते नोट करेंगे, रब का इनकार नहीं करना, शक में नहीं पड़ना, हक से मुंह नहीं मोड़ना, अल्लाह हमें इसकी तौफीक भी दे, अल्लाह को छोड़कर दूसरों को वली नहीं बनाना, पिछली कौमों से सबक सीखना है और मजाक में भी दीन को नहीं झुटलाना। अल्लाह आपको मुझे इसकी तौफीक ना दे कभी भी क्या कि हम दीन का मजाक करें। अब दीन का मजाक कैसे होगा, किसी भी दीनी रिचुअल का मजाक उड़ा के। आगे है आयत नंबर 11 से 20, रुकू नंबर 8, अल्लाह की निशानियाँ देखने के लिए चलना फिरना। कुल सीरु फिल अर्थ, आप फरमा दीजिए कि ज़रा ज़मीन में चलो फिरो, फिर देखो कि तकजीब करने वालों का क्या अंजाम हुआ। आप कहिए कि जो कुछ आसमानों और ज़मीन में मौजूद है ये सब किसकी मलकियत है, आप क्या जवाब देंगे। आप कह दीजिए सब अल्लाह ही की मलकियत है, अल्लाह ने मेहरबानी फरमाना अपने ऊपर लाजिम फरमा लिया। तुमको अल्लाह रोज़े क़यामत जमा करेगा जिसके आने में कोई शक नहीं, जिन लोगों ने अपने आप को घाटे में डाल दिया बस वो ईमान नहीं लाएंगे, और अल्लाह ही की मिल्क हैं वो सब जो रात में और दिन में रहती हैं, वही बड़ा सुनने वाला और बड़ा जानने वाला है। क्या आप कह दीजिए कि अल्लाह के सिवा जो कि आसमान और ज़मीन का पैदा करने वाला है, जो कि खाने को देता है और इसको खाने को नहीं कोई देता, और किसी को माबूद बना लूँ, यानी अल्लाह को छोड़कर और किसी को बना लूँ। आप फरमा दीजिए कि मुझको ये हुक्म हुआ है कि सबसे पहले मैं इस्लाम कबूल करूँ और तू मुशरिकीन में से हरगिज़ ना होना। आप कह दीजिए मैं अगर अपने रब का कहना ना मानूँ तो मैं एक बड़े दिन के अजाब से डरता हूँ। इस जुमले को आप भी नोट करें, आयत 15 है। कभी कोई आपको फोर्स करे ना किसी गुनाह पे तो ये जुमला बोल दिया करें, या अरबी की आयत याद कर लें। जिस शख्स से उस रोज़ वो अजाब हटा दिया जाए तो इस पर अल्लाह ने बड़ा रहम किया और ये खुली कामयाबी है। वहीं यमसस्कुल्लाहु बिज़ुर्रिन फला काशिफला, अकीदे को पुख्ता करने वाली आयत है, इसका नंबर नोट कर लीजिए, आयत 17, जो मार्फत हक का लाजमी नतीजा कि फिर आप लोगों से नफ़ा और नुकसान नहीं अल्लाह पे नज़रें लगाते हैं। और अगर तुझको अल्लाह कोई तकलीफ़ पहुंचाने का इरादा करे तो इसको दूर करने वाला उसके सिवा कोई और नहीं, और अगर तुझको अल्लाह ही कोई नफ़ा पहुंचाए तो वो हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखने वाला है, और वही अल्लाह अपने बंदों के ऊपर गालिब है, और वही बड़ी हिकमत वाला और पूरी खबर रखने वाला है। आप कह दीजिए सबसे बड़ी चीज़ गवाही के लिए कौन है, आप कहिए कि मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह गवाह है, और मेरे पास ये कुरान बतौर वही के भेजा गया ताकि मैं इस कुरान के ज़रिए से तुमको और जिस जिस को ये कुरान पहुँचे इन सबको डराऊँ। क्या तुम सचमुच यही गवाही दोगे कि अल्लाह ताला के साथ कुछ और भी माबूद है। आप कह दीजिए मैं तो गवाही नहीं देता। आप फरमा दीजिए बस वो तो एक ही माबूद है और बेशक मैं तुम्हारे शिर्क से बेजार हूँ। कितना यकीन था नबी को इस बात पे कि ला इलाहा इल्लल्लाह। जिन लोगों को हमने किताब दी वो लोग रसूल को पहचानते हैं जिस तरह अपने बेटों को पहचानते हैं, और जिन लोगों ने अपने आप को घाटे में डाला बस वो ईमान नहीं लाएंगे। क्या पता चला कि जिनको नहीं मानना वो नहीं मानते। अल्लाह के नबी ने पैगाम पूरा दिया, आप मानो तो आपकी मर्ज़ी, नहीं मानते तो आपकी मर्ज़ी। आपके मेरे लिए अमल की बात क्या है, इस रुकू में अल्लाह ने अपने ऊपर रहमत को लाजिम करार दिया, लिहाजा वो काम कीजिए जिसकी वजह से अल्लाह की रहमतें मिलें। फिर ज़मीन में सैर व तफरी के लिए जाएँ, मकसद मुशाहिदा हो। अल्लाह के आगे सरे तस्लीम खम करना है, क़्यामत के रोज़ अल्लाह ताला सबको जमा करेगा इस बात पे यकीन रखना है, लोगों को हक की दावत देनी है और अल्लाह की नाफरमानी से डरना है। और ख़ास तौर पे आगे आयत 21 से 30 में, 21 to 30, रुकू नंबर 9, अल्लाह के सामने खड़े होने को याद रखना है। और इसका सबक हमें दिन में कितनी दफ़ा मिलता है, 5 दफ़ा, हर रकत में एक बार कूमुलिल्लाह ही कानेदीन। एक अल्लाह के लिए खड़े हो जाओ, अल्लाह में नमाजों में ही क़यामत के दिन खड़े होने का वक्त जा दिलवा दे। वमन असलम मिम्मन इफ्तरा अलल्लाही कज़िबा, और इससे ज़्यादा बेइंसाफ़ कौन होगा जो अल्लाह ताला पर झूठ बोहतान बांधे या अल्लाह की आयात को झूठा बतलाए। ऐसे बेइंसाफ़ों को कामयाबी ना होगी, और वो वक्त भी याद करने के काबिल है जिस रोज़ हम तमाम मखलूक को जमा करेंगे। फिर हम मुशरिकीन से कहेंगे, तुम्हारे वो शुरका जिनके माबूद होने का तुम दावा करते थे वो किधर गए? फिर इनके शिर्क का अंजाम इसके सिवा और कुछ भी ना होगा कि वो यूं कहेंगे कि कसम अल्लाह की, अपने परवरदिगार की, हम मुशरिक ना थे। ज़रा देखो तो उन्होंने किस तरह झूठ बोला अपनी जानों पर, और जिन चीज़ों को वो झूठ मूठ तराशा करते थे वो सब गायब हो गए। और इनमें से बस ऐसे भी हैं जो आपकी तरफ कान लगाते हैं, यानी बज़ाहिर आपकी बात बड़े गौर से सुन रहे होते हैं, लेकिन मकसद क्या होता है बात को सुनने का? आगे पहुँचाना, ना के अमल करना। क्या पता चला कि सुनने के बावजूद भी कुछ लोग सुन हो चुके होते हैं, और हमने इनके दिलों पर पर्दा डाल रखा है इससे कि वो इसको समझें, और इनके कानों में डॉट है यानी लॉक, वो जो एक आगे से बंद करने के लिए लगाते हैं। और अगर ये लोग तमाम दलाइल को देख भी लें तो भी इन पर कभी ईमान ना लाएं, यहाँ तक कि जब ये लोग कभी आपके पास आते हैं तो आपसे ख्वामख्वाह झगड़ते हैं। ये लोग जो काफिर हैं यूं कहते हैं, ये तो कुछ भी नहीं सिर्फ बेसनत बातें हैं जो पहलों से चली आ रही हैं। क्या पता चला? कुरान को आउटडेटेड समझना, ये तो पहले लोगों की भी बात थी। आज भी लोग कहते हैं आप कुरान पढ़ेंगे, इतनी पुरानी किताब, तो भी आप पुराने नहीं, आसमान पुराना नहीं, ज़मीन पुरानी नहीं। वो इससे दूसरों को भी रोकते हैं और ख़ुद भी इससे दूर रहते हैं, और ये लोग अपने ही आप को तबाह कर रहे हैं और कुछ खबर नहीं रखते। और अगर आप इस वक्त देखें जबकि ये दोजख के पास खड़े किए जाएंगे तो कहेंगे, हाय क्या अच्छी बात हो कि हम फिर वापस भेज दिए जाएं। और अगर ऐसा हो जाए तो हम अपने रब की आयात को झूठा ना बतलाएं और हम ईमान लाने वालों में से हो जाएं। ज़रा सोचिए, आज ज़िंदगी में आप और मैं अपने ऊपर नज़र डालें, दिल करते एक बार फिर बचपन आ जाए, अर्ली टीनेज हो जाए, चले टीनेजर बन जाए, हाय 20 से ऊपर कभी ना जाते, नया एक लाइफस्टाइल शुरू करें, हाय इतना कुछ भूल रहे हैं, हाय इतनी कमी है हमारे अंदर, हाय एक बार फिर कुरान सीखें, हाय कभी बचपन में कुरान पे लग गए होते, हाय कभी ये आयतें सुन ली होती, ये पढ़ ली होती। दुनिया में भी इंसान सोचता है, वहाँ जाकर भी लोग कहेंगे कि काश हम ना झुटलाते। तो आज मैं और आप जिंदा हैं, अपने आपको चुटकी काट कर यकीन दिलाइए, अभी अमल का मौका है, अभी नफ्स चल रही है, दिल धड़क रहा है, नामे अमाल में लिखने के, डू और अनडू करने के सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। इस वक्त तौबा कीजिए, आज के बाद वट एवर इज़ योर एज टूडे, जो भी आपका लाइफ स्पैन चल रहा है, आप इससे अगले को बेहतर कर ले, अल्लाह पिछले को भी नेकियों में इंशाल्लाह बदल देगा। फिर फरमाया, बल्कि जिस चीज़ को इससे कबल छुपाया करते थे वो इनके सामने आ गई, और अगर ये लोग फिर वापस भेज भी दिए जाएं, यदि ये जो दावे करते हैं ना, करना कराना इन्होंने फिर भी कुछ नहीं, क्योंकि जब वापस भेज भी दिए जाएंगे तब भी ये वही काम करेंगे जिससे इनको मना किया गया था, और यकीनन ये बिल्कुल झूठे हैं। और ये कहते हैं कि सिर्फ यही दुनियावी ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी है और हम जिंदा ना किए जाएंगे। और अगर आप इस वक्त देखें जब ये अपने रब के सामने खड़े किए जाएंगे, अल्लाह ताला फरमाएगा, क्या ये अमरे वाकई नहीं, यानी ये हकीकत नहीं है? वो कहेंगे, बेशक कसम अपने रब की। अल्लाह ताला फरमाएगा, तो अब अपने कुफर के इवज़ अजाब चखो। अल्लाह हू अकबर, ऐसे नहीं लग रहा कि सूरत अलनाम शुरू होते ही हम सब मैदाने मक्षर में पहुंच गए हैं? सब नक्की, और आपको बड़ी सिंपल सूरतें, देखिए तीन बातें पढ़ेंगे आप सिर्फ, अब ये मक्की सूरतों में सूरत अलनाम और सूरत अलराफ, ये दो मक्की सूरतें होंगी, आपको ऐसे लगेगा जैसे एपेटाइजर, स्लोली सिर्फ तीन बातें, ईमान रिसाला, ईमान बिल्ला, ईमान बिल रसूल और ईमान बिल आखिरा। और आज तो बातें सारी मार्फत की हो रही हैं, तो इस तीन की मार्फत, अल्लाह की मार्फत, रसूल की मार्फत और अपनी ज़िंदगी की हकीकत, मरने के बाद क्या होगा, इसको लेने वाले इंशाल्लाह सीधे हो जाते हैं। फिर इन आयात का खुलासा अगर देखें तो अल्लाह ताला की सिफात हैं, कुफार की सरकशी है, अहले किताब का नबी सल्लम को पहचानना लेकिन ना मानना, और मुशरिकों का अंजाम है। रज़ा इलाही को पाने वाले काम, अल्लाह पर झूठ नहीं बांधना, झगड़े नहीं करने, हक कबूल कर लेना, मरने के बाद जी उठने पे ईमान लाना, और अपनी तबाही का सामान नहीं करना, दूसरों को हक कबूल करने से नहीं रोकना। अल्लाह हमें सब पे अमल की तौफीक दे। आगे रुकू नंबर 10 आए 31 से 41, हक के रास्ते पे जमना है इंशाल्लाह। बोलिए, कद खसीर अल्लसी नकज़बू बिलका इल्ला, बेशक खसारे में पड़ गए वो लोग जिन्होंने अल्लाह ताला से मिलने की तकजीब की, यहाँ तक कि जब वो मुय्यन वक्त इन पर अचानक आ पहुँचेगा कहेंगे कि हाय अफसोस हमारी कोताही पर जो इसके बारे में हुई, और हालत ये होगी कि वो अपने बोझ अपनी पीठों पर लादे होंगे। खूब सुन लो कि बुरी होगी वो चीज़ जिसको वो लादेंगे, और दुनियावी ज़िंदगी तो कुछ भी नहीं सिवाय लहव लाइब के, और दारुल आखिरा मुत्तकीन के लिए बेहतर है, क्या तुम सोचते समझते नहीं? हम खूब जानते हैं कि आपको इनके अकवाल गमज़दा करते हैं, यानी बातें करते थे अल्लाह के नबी के ख़िलाफ़ छुप छुप के। बस ये लोग आपको झूठा नहीं कहते, लेकिन ये जालिम तो अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं, और बहुत से पैगंबर जो आपसे पहले हुए हैं इनकी भी तकजीब की जा चुकी है, बस उन्होंने इस पर सब्र ही किया। इनकी तकजीब की गई और इनको ईज़ाएँ पहुँचाई गई, यहाँ तक कि हमारी इमदाद इनको पहुँची, और अल्लाह ताला की बातों को बदलने वाला कोई नहीं, और आपके पास बास पैगंबरों की बास खबरें पहुँच चुकी हैं। और अगर आपको इनका एराज करना यानी मुंह फेरना गिरां गुजरता है यानी बोझ पड़ता है, तो अगर आपको ये कुदरत है कि ज़मीन में कोई सुरंग या आसमान में कोई सीढ़ी ढूंढ लें और फिर कोई मौजज़ा ले आए तो कर दीजिए, और अगर अल्लाह को मंजूर होता तो इन सब को जमा कर देता, बस अब नादानों में से ना हो जाइए। वही लोग कबूल करते हैं जो सुनते हैं, और मुर्दों को अल्लाह ताला जिंदा करके उठाएगा, फिर सब अल्लाह ही की तरफ लाए जाएंगे। और ये लोग कहते हैं कि इन पर कोई मौजज़ा क्यों नाजिल ना किया गया? इनके रब की तरफ से आप फरमा दीजिए कि अल्लाह को बेशक पूरी कुदरत है इस पर कि वो मौजज़ा नाजिल फरमाए, लेकिन इनमें से अक्सर बेखबर हैं। और जितनी किस्म के जानदार ज़मीन पर चलने फिरने वाले हैं और जितने किस्म के परिंद जानवर हैं अपने दोनों बाजों से उड़ते हैं, इनमें कोई किस्म ऐसी नहीं जो कि तुम्हारी तरह के गिरोह ना हो, यानी रब्बुल आलमीन ने हर मखलूक के गिरोह बनाए हैं। हमने दफ्तर में कोई चीज़ नहीं छोड़ी, फिर सब अपने परवरदिगार के पास जमा होंगे। दफ्तर से मुराद लोहे महफूज है। और जो लोग हमारी आयतों की तकजीब करते हैं वो तो तरह तरह की जुल्मतों में बहरे गूंगे हो रहे हैं। अल्लाह जिसको चाहे बेराह कर दे और जिसको चाहे सीधी राह पर लगा दे। आप कहिए अपना हाल तो बताओ कि अगर अल्लाह तुम पर अजाब ले आए या तुम पर क़यामत ही आ पहुँचे तो क्या अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारोगे? अगर तुम सच्चे हो नहीं, बल्कि ख़ास इसी को पुकारोगे, फिर जिसके लिए तुम पुकारोगे अगर वो चाहे तो इसको हटा भी दे, और जिनको तुम शरीक ठहराते इन सब को भूल भाल जाओगे। इन आयात के बारे में हज़रत नुमान बिन बशीर से एक रिवायत है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, दुआ वही इबादत है, यानी अद्दुआ हुल इबादा। फिर अल्लाह के नबी ने यह आयत पढ़ी, वक़ाल रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम, तुम्हारे रब ने कहा कि मुझे पुकारो मैं तुम्हारी पुकार सुनूंगा। क्या पता चला कि फितरत के अंदर गुंदा हुआ तौहीद का अहद। आपको था कि जो लोग अल्लाह को नहीं मानते ना, या एथियस कहते हैं खुद को, जलजला आ जाए, जहाज में झटके लगने लग जाएं, ओ गॉड ओ गॉश कहने लग जाते हैं। कुछ माह पहले, मेरे ख्याल 1 साल हो गया होगा, शिकागो एयरपोर्ट पे एक जहाज़ को आग लग गई थी। खड़ा ही था अभी और आग लग गई, दरवाजे बंद हो चुके थे और दरवाजे खुल नहीं रहे थे, और जब लोगों को पता चला कि जहाज़ को बाहर आग लगी हुई है और अब निकल नहीं पा रहे, और फिर जब उसके बाद दरवाजे खुले तो जो चीखों पुकार थी और जो निकल के वो दौड़ रहे थे, सिर्फ एक आवाज़ कानों में पड़ रही थी, ओ गॉड ओ गॉड ओ गॉड, अल्लाह अकबर। अमल के नुक्ते नोट करते हैं, राह हक पर मिलने वाली ईज़ाओं पे सब्र करना है, अक़ल से काम लेना है, दावत हक पे लब्बैक कहना है, अकीदे तकदीर को समझ लेना है, और अल्लाह की किताब में कोई कमी नहीं इस पर ईमान लाना है, और मुसीबत क्या हर हाल में सिर्फ अल्लाह को पुकारना है। आगे है आयत 42 से 50, रुकू नंबर 11-11, वही इलाही की पैरवी, वलकद अरसलना इला उमम मिन कबलिक, और हमने और उम्मतों की तरफ भी जो कि आपसे पहले गुजर चुकी हैं पैगंबर भेजे थे, बस हमने इनको तंगदस्ती और बीमारी से पकड़ा ताकि वो इजहार इज कर सके, बस जब इनको हमारी सज़ा पहुंची थी तो उन्होंने आजजी की इख्तियार ना की, लेकिन इनके कुलूब सख्त हो गए और शैतान ने इनके अमाल को इनके ख्याल में आरास्ता कर दिया। फिर जब वो लोग इन चीज़ों को भूले रहे जिनकी इनको नसीहत की जाती थी, तो हमने इन पर हर चीज़ के दरवाजे कुशादा कर दिए, यहाँ तक कि जब इन चीज़ों पर जो कि इनको मिली थी वो खूब इतरा गए, हमने इनको अचानक पकड़ लिया फिर तो वो बिल्कुल मायूस हो गए। इस आयत का नंबर नोट कीजिए। अल्लाह ताला का कानून इम्हाल है, मोहलत देने का। लोगों को पहले खूब देता है, फिर वो सरकशी करते हैं, फिर और देता है। हमें तो कोई तंग करे ना तो हमने दी हुई चीज़ वापस लेनी होती है। मंगनी टूटती है तो जो दी हुई अंगूठियाँ और कपड़े वापस ले आते हैं। अल्लाह सुबहान ताला लोगों को और देता है और देता है, और जब लोग उसमें मगन हो जाते हैं ना एकदम हाथ खींच लेता है। फिर जालिम लोगों की जड़ कट गई, और अल्लाह ताला का शुक्र है जो तमाम आलिम का परवरदिगार है। आप कहिए कि ये बतलाओ अगर अल्लाह तुम्हारी समात और बसारत बिल्कुल ले ले, या आप अपने आप से और मैं अपने आप से सवाल करूं, और तुम्हारे दिलों पर मोहर कर दे, तो अल्लाह के सिवा और कोई माबूद है कि वो तुमको फिर दे दे? बिना ही चली जाती है तो बंदा वापस नहीं ला सकता, इतने डॉक्टर्स के होने के बावजूद। आप देखिए तो हम किस तरह दलाइल को मुख्तलिफ पहलुओं से बयान कर रहे हैं फिर भी ये एराज करते हैं। आप कहिए कि ये तो बतलाओ कि अगर तुम पर अल्लाह का अजाब आ पड़े ख्वाह अचानक या एलानिया, तो क्या सिवाय जालिम लोगों के और भी कोई हलाक किया जाएगा? मुराद है कि नहीं? और हम पैगंबरों को सिर्फ इस वास्ते भेजा करते हैं कि वो बशारत दें और डराएं, फिर जो ईमान ले आए और दुरुस्तगी कर ले, बस ऐसे लोगों पर कोई अंदेशा नहीं और न वो गमजदा यानी मगमूम होंगे। और जो लोग हमारी आयतों को झूठा बतलाएं इनको अजाब पहुँचेगा बावजूद इसके कि वो नाफरमानी करते हैं। आप कह दीजिए कि ना तो मैं तुमसे ये कहता हूँ कि मेरे पास अल्लाह ताला के ख़जाने, यानी नबियों ने कभी भी ये दावा किया भी नहीं, और ना मैं गैब जानता हूँ, और ना मैं तुमसे ये कहता हूँ कि मैं फरिश्ता हूँ। मैं तो सिर्फ जो कुछ मेरे पास वही आती है इसका इत्तबा करता हूँ। आप कह दीजिए कि अंधा और बीना कहीं बराबर हो सकते हैं? बस क्या तुम गौर नहीं करते? अब देखिए कितनी वाज़े आयतें हैं, इसके बावजूद लोग आज भी अल्लाह के नबी के बारे में इतना शिर्क करते हैं, इतनी गलत फहमी का शिकार है, क्योंकि मारफत हक नहीं है। क्या खुलासा है इन आयात का? क़यामत के झुटलाने वालों को पशेमानी होगी, सरकशी में हद से बड़े हुए लोग क़यामत के दिन परेशान होंगे। अल्लाह ने मौजज़ाना अतिया यानी जो मौजज़ात थे वो नहीं दिए नबी को, उसकी हिकमत पता चली कि ना मानने वालों ने फिर भी नहीं मानना होता। देखिए जिसको भूख नहीं होती ना, आप 10 चीज़ें उसके सामने रख दे वो यही कहेगा मैंने नहीं खाना। बच्चा ज़िदें करता है, बहाने करता है, माँ कहती छोड़ दो इसको भूख नहीं है। जिसको हिदायत की भूख नहीं है ना, उसके सामने बिछ जाएँ फिर भी नहीं वो बात मानेगा। आप जितना मर्जी फैसिलिटेट कर दें उसको नहीं फ़ायदा उठाना, वो नहीं करेगा। तो यहाँ क्या पता चला कि अल्लाह ताला अपनी तरफ से काम पूरे करता है और अंधा और देखने वाला बराबर नहीं। आपके मेरे लिए अमल के नुक्ते क्या हैं? आजिज़ी इख्तियार करनी है, खुशहाली को आजमाइश समझना है। अगर अल्लाह ने आपको नेमतें दी है ना, तो इसको इम्तिहान के पर्चे समझिए, एक एक नेमत का सवाल होगा। नेक किरदार लोगों के लिए खुशखबरियाँ मिली, हमने भी नेकी करने की कोशिश करनी है। खैर से कभी भी मायूस नहीं होना, इस वक्त उम्मत को पॉजिटिविटी देने की ज़रूरत है। उम्मत मुस्लिमा को कॉम्प्लेक्स से एहसास से महरूमी से निकालने के लिए आजकल ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो मुस्बत सोच के साथ दीन का पैगाम दें, फिर अपनी इसलाह भी करनी है। और बद किरदार के लिए डरावे हैं, इसलिए बुरे किरदार बनने से खुद को और दूसरों को बचाना है। आगे है जी आयत नंबर 51 से 55, रुकू नंबर 12 है, रज़ाए इलाही की तलब में रहना। वंजिर बिहिल लसीन यखाफून, और ऐसे लोगों को डराइए जो इस बात से अंदेशा रखते हैं कि अपने रब के पास इस हालत में जमा किए जाएंगे कि जितने गैर अल्लाह हैं ना इनका कोई मददगार होगा और ना कोई सिफारिश करने वाला, इस उम्मीद पर कि वो डर जाएं। और इन लोगों को ना निकालिए जो सुबह शाम अपने परवरदिगार की इबादत करते हैं, ख़ास इसकी रजामंदी का कसद करते हैं। देखिए इसमें भी सुबह शाम अल्लाह की रज़ा पाने के लिए भाग दौड़ करने का हुक्म है। इनका हिसाब ज़रा भी आपके मुतल्लिक नहीं और आपका हिसाब ज़रा भी इनसे मुतल्लिक नहीं कि आप इनको निकाल दें, वरना आप जुल्म करने वालों में से हो जाएंगे। और इसी तरह हमने बास को बास के ज़रिए से आजमाइश में डाल रखा है ताकि ये लोग कहा करें क्या ये वो लोग हैं कि हम सब में इन पर अल्लाह ने फजल किए, क्या ये बात नहीं कि अल्लाह शुक्रगुजार बंदों को खूब जानता है। कितना खूबसूरत अंदाज है, आप देखिए कि सिर्फ आप आयतों का हुसन भी देखें ना तो दिल नहीं करता अलग से बात करने को। और आगे क्या फरमाया, और ये लोग जब आपके पास आए जो हमारी आयतों पर ईमान रखते हैं तो यूं कहिए कि तुम पर सलामती है, कतबाला नफ्सिहिर रहमा, तुम्हारे रब ने अपने ऊपर मेहरबानी फरमाना लाजिम कर लिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह की रहमत उसके गज़ब पे हावी है। और ये कि जो शख्स तुम में से बुरा काम कर ले जहालत से, फिर इसके बाद वो तौबा करे और इसलाह करे, तो अल्लाह की ये शान है कि वो बड़ी मग़फ़रत वाला है, बड़ी रहमत वाला है। इस तरह हम आयात की तफसील करते रहते हैं ताकि मुजरिमीन का तरीका जाहिर हो जाए। क्या पता चला कि अल्लाह के नबी के जो महबूब साथी थे सहाबे कराम, उनकी क्या खूबियाँ इस रुकू में आईं। सुबह शाम रब को पुकारते थे और अपने रब की रज़ा की तलब करते थे। और आयत 52-54 में कुरैश के अरब लोग गरीब सहाबा को अपनी महफिलों में आना नापसंद करते थे। इससे बता दिया कि तुम्हें क्या पता कौन अमीर है कौन गरीब, क्या पता वही तुम्हारी निजात का ज़रिया बन जाए। और इसी तरह अल्लाह ताला ने यह आयत फिर ऐसे लोगों के हक़ में नाजिल की। आपके मेरे लिए अमल के नुक्ते, इल्मे वही से नसीहत लेना। आज लोग कहाँ से लेते हैं, गूगल से, हर चीज़ उधर से निकाल कर देखते हैं। और कुरान पढ़े हुए शायद कितने ही दिन हो गए। फिर अल्लाह का खौफ रखना है और अल्लाह को रात दिन पुकारना, तौबा करना और इस्लाह करना, शुक्र करना और अल्लाह की खुशनुदी की तलब में लगे रहना। अल्लाह हमें इसकी तौफीक दे।